शांति। राजयोग में जितना ही आत्मा का महत्व है, अर्थात राजयोग में योगी की पहचान दी जाती है, तो आत्मा योगी है उसकी पहचान मिली, उतना ही परमात्मा का भी महत्व है जो योगेश्वर है। योगी उस योगेश्वर से योग लगाता है, तो उसकी भी पहचान मिली आपको। और फिर राजयोग में तीसरा भी एक महत्वपूर्ण विषय है, समय, समय की शक्ति। यह संसार एक काल चक्र है और ये चक्र नित्य चलता रहता है। समय एक लकीर की तरह नहीं है जो एक स्थान पर आरंभ हुआ और दूसरे स्थान पर जाके समाप्त हुआ। लकीर तो आरंभ हुई और समाप्त होती है, पर समय एक चक्र है और उस चक्र में परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन होते होते वापस वहीं पर हम आते हैं जहां से आरंभ किया था। इसलिए चक्र का अंत नहीं है, लेकिन एक चक्र की अवधि का अंत जरूर है, उसमें अंत और आदि जरूर है। बहुत विस्तार से आपको आज दिन में बताया गया। अब समय के पहचान के बाद चौथा विषय जो राजयोग में बहुत ही जरूरी है कि अभी जो समय चल रहा है, जिसको हम कलयुग का अंत और सतयुग की आधी का समय कहते हैं, ऐसे समय पर हमें करना क्या है। समय के महत्व के साथ उस समय पर जो कर्म किया जाता है उसका भी अपना महत्व होता है। समय के बाद अगर वो चाहे कितना भी अच्छा कार्य हो, उसका महत्व इतना नहीं होता जितना समय पर किया उसका महत्व होता है। तो राजयोग में कर्म को भी बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन क्या हमने इस कर्म की गहन गति को समझा है? क्योंकि कहा जाता है कर्म की गति बड़ी बलवान है और साधारण इंसान इस गति को नहीं समझ पाता है, इसलिए उनके मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों, जैसे बताया, ये कैसे आदि आदि। लेकिन अगर इस गति को हम ठीक समझ लेंगे, कर्म की गति को, तो ये प्रश्न मन में नहीं उत्पन्न होंगे। हमें वो रोशनी मिल जाएगी जिससे हम समझ जाएंगे ये ऐसा क्यों है। तो क्या है कर्मों की गोह्य गति, वो आज हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कर्म की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो कर्म की परिभाषा क्या है। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है और उसमें आत्मा जो करता है वो कर्म करता है। इस शरीर के द्वारा आत्मा करती है और आत्मा के लिए ही कहा जाता है कि आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, क्योंकि आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा उसको फल मिलता है। पर कर्म की परिभाषा क्या है, कई बार हम अपने कर्मों को कोसते हैं, हाय मेरे कर्म, ये मैंने क्या कर दिया, हाय मेरा भाग्य। तो अगर कर्म शब्द की यानी परिभाषा देखें शाब्दिक रूप से कर्म की परिभाषा बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे युज शब्द संस्कृत से निकला है जिसका अर्थ है जोड़, वैसे ही कर्म भी एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कोई भी कार्य, क्रिया अथवा कृति। इंग्लिश में हम उसको वर्ब कहते हैं, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना जागना आदि आदि, ये सब कर्म के अंदर अंतर्गत आता है, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन कर्म की परिभाषा इतनी सीमित नहीं है, एक क्रिया के रूप में ही केवल नहीं है, लेकिन कर्म का जो व्यापक अर्थ है वो है कि कोई भी क्रिया या कार्य और उसकी प्रतिक्रिया, उसका परिणाम, वो दोनों ही कर्म के अंतर्गत संलग्न है। केवल क्रिया ही कर्म नहीं है, लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया, कार्य और उसका परिणाम, ये दोनों कर्म में आते हैं। कई बार कार्य कुछ और होता है, परिणाम कुछ और होता है, तो कई लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों। लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, और उस राज को अगर हम समझ जाएंगे तो नाराज नहीं होंगे। तो क्या है वो राज? साधारण रूप से कर्म सिद्धांत को समझना भी मुश्किल नहीं है कि आपकी जैसी क्रिया होगी वैसी ही प्रतिक्रिया भी होगी। हर क्रिया की समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमें दिया, गति का तीसरा सिद्धांत, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें उसने दिखाया कि अगर चार गेंद या पांच गेंद ऐसे लटक रहे हैं और उसमें से एक गेंद को आपने अपनी ओर खींचा और फिर जोर से उसको मारा दूसरे गेंदों पर, तो जो पांचवें नंबर का गेंद है वो उसी ही शक्ति से बाहर जाएगा, फिर उसी शक्ति से वापस आएगा। यानी जैसी आपकी क्रिया होगी वैसी ही प्रतिक्रिया भी होगी। परंतु कर्म सिद्धांत को इतना सहज नहीं है समझना, क्योंकि कई बार क्रिया तो थोड़ी सी होती है लेकिन प्रतिक्रिया उसकी बहुत जबरदस्त होती है, और कई बार क्रिया तो जबरदस्त होती है लेकिन प्रतिक्रिया तो उसकी बहुत कम होती है। उसकी भेंट में हम इतनी मेहनत करते हैं तो भी लगता है सफलता तो इतनी मिली नहीं। कई बार मेहनत कुछ भी नहीं करते और सहज सफलता मिल जाती है, तो फिर क्रिया और प्रतिक्रिया समान तो हुई नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत में बहुत गहरी बातें हैं, इतना सहज नहीं है समझना। तो क्या है इसकी गहरी बातें? कारण और उसका परिणाम का सिद्धांत हमें ठीक ढंग से समझना होगा। कई बार आप किसी खुले मैदान में जाते हैं और उस खुले मैदान में जहां कोई पेड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, एकदम खुला खाली, और वहां आप जोर से आवाज करते हैं, बहुत जोर से आवाज किया, बहुत ताकत लगाई, लेकिन प्रतिक्रिया उसकी क्या होगी कि आपको भी वो आवाज सुनाई नहीं देगा, वो उड़ गया हवा में, क्योंकि वापस वो आया ही नहीं जो टकराए किससे और वापस आए। लेकिन आप थोड़ा सा भी आवाज एक गुंबज में करेंगे, थोड़ा सा भी, वो आवाज कितनी बार उस वो वापस आपको मिलेगा एको के रूप में, वो उसका वो चलता रहेगा, चलता रहेगा कितनी बार। तो क्रिया तो हमने बहुत की और परिणाम कुछ नहीं, और क्रिया थोड़ी सी की और इतना परिणाम। तो क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में कहाँ की वो क्रिया, वो भी बहुत उस पर निर्भर करता है। कोई कहे कि हत्या करना पाप है, बहुत बड़ा पाप है, बड़ा अपराध है, तो अगर कोई ऐसे ही हत्या करता है तो उसकी तो सजा, उसको फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की जान ली तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये कानून के अंतर्गत आता है कि हत्या की है तो इसको भी फांसी मिलेगी या उम्र कैद मिलेगी, माना जीवन का बदला जीवन। लेकिन एक सिपाही जो सरहद पर है, बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा कर रहा है, और वो उसके सामने कितने दुश्मन हैं, और अगर वो बंदूक चलाकर दुश्मनों को ढेर करता है तो उसका तो कितना नामाचार हो जाता है, उसको तो वीर चक्र, परम वीर चक्र, प्रेसिडेंट से अवार्ड्स मिलते हैं। कर्म तो उसने मारने का ही किया, लेकिन वो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे लक्ष्य कुछ और था। भारत के 125 करोड़ जनसंख्या की रक्षा के लिए वो सरहद पर खड़ा है, और उस समय अगर वो गोली नहीं चलाएगा तो वो अपराधी माना जा सकता है। तो कितना अंतर हो गया। तो समय, स्थान, परिस्थिति आदि ये सब बातें कर्म और उसके कारण और उसके परिणाम में आते हैं, परंतु कई बातें वो हमें समझ में नहीं आती, इसीलिए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए कर्म शब्द का अगर मूल अर्थ देखें कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, अथवा हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। अब उसने हत्या की, वो कर्म तो बना, ठीक है, गलत था, पाप तो बना होगा, लेकिन 125 करोड़ लोगों की जो दुआएं उसको मिली, उसकी भेंट में वो एक दुश्मन की हत्या कोई मायने ही नहीं रखती है। तो आप देखिए, जो प्राप्ति उसको हुई उसकी भेंट में वो कर्म जो लगता है गलत, लेकिन वो बहुत ऊंचा कर्म था, क्योंकि दुआएं कितनी मिली। कोई कहे झूठ बोलना पाप है, अवश्य पाप है। बच्चों को हम बहुत डांटते हैं अगर झूठ बोलते हैं, कोई भी झूठ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई ऐसे प्रसंग आएंगे जहां सच बोलना भी पाप बन सकता है, सच बोलना भी पाप बन सकता है। एक मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति रास्ते पर खड़ा था और उसने देखा कि एक गाय भागती भागती आई अपनी जान बचाने के लिए, और उस व्यक्ति ने देखा वो किस तरफ गई, मोड़ था, वहां भाग गई भागती भागती जान बचाने के लिए। और उसके थोड़ी देर के बाद एक कसाई आया और उस व्यक्ति से पूछता है गाय किस ओर गई। अब वो व्यक्ति सच बताए या झूठ बताए, क्योंकि सच बताएगा तो वो जाएगा उसके पीछे, और झूठ बताएगा तो वो बेचारी गाय बच जाएगी। मानो तो बोला तो झूठ मानो, पर वो झूठ इतना पाप नहीं है जितना सच बताता और उस गाय का वध करता, वो पाप बन जाता, क्योंकि उसकी रक्षा की, वो पुण्य किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज देखिए कितनी गौ रक्षा पर क्या नहीं हो रहा है। गौ माता है भारत में, हम उनको माँ के रूप में पूजते हैं। तो देखिए कि कर्म और फल, इसका जो हम कैसे अंदाजा लगाएं, कैसे समझें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। बुरे का फल बुरा है, अच्छे का फल अच्छा है, लेकिन तुरंत समझ करके उस परिणाम तक हम पहुंचेंगे तो वो तो सही नहीं होगा। एक बच्चा झूठ बोलता है, मान लो अपनी रक्षा के लिए, बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया या वास तोड़ दिया, शीशे का कुछ रखा था और उसका हाथ लग गया और गिर गया, टूट गया। अब माँ ने आवाज सुनी और भागती भागती आई, ये तुमने तोड़ा, सच बताओ सच बताओ। अब वो बच्चा सच बताएगा या झूठ, क्योंकि उसको अपनी रक्षा करनी है, अगर सच बताएगा तो थप्पड़ मिलेगी। तो बच्चा क्या कहेगा, मम्मी मैंने नहीं तोड़ा। अब झूठ बता दिया क्योंकि डर है कि मम्मी की मार मिलेगी। परंतु अगर बच्चे से वो प्यार से पूछती होती, गुस्से से नहीं, तो वो बच्चा सच जरूर बताता, क्योंकि बच्चा झूठा नहीं होता, उसके अंदर सच के ही संस्कार होते हैं। पर क्योंकि माँ में क्रोध था तो अपनी रक्षा तो करेगा ना बच्चा, तो माँ को वो तर्क देगी, पर ये झूठ बोलता इसीलिए उसने उसको मैंने मारा। अब झूठ क्यों बोला, क्योंकि माँ ने क्रोध किया। तो बच्चे पर पाप नहीं चढ़ेगा झूठ बोलने का, लेकिन माँ पर डबल पाप चढ़ेगा क्योंकि क्रोध किया। अब डबल पाप माँ पर चढ़ गया, बच्चे पर कोई पाप नहीं चढ़ा। और माँ समझती है मैं इसको झूठ बोलना झूठ बोलने के लिए रोका। अब ये तो 3 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। तो कर्म को साधारण रूप में समझना बड़ी बात नहीं है। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया माना, जैसा बीज वैसा फल। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आपको अनार का फल मिलने वाला नहीं है, आम का बीज डाला तो आम का ही फल मिलेगा। लेकिन पहले जमाने में कहा जाता था दादा बोए और पोता खाए, आम के बीज के लिए कहा जाता था। अगर दादाजी ने आम बोया है तो दादाजी के जीवन काल में तो वो फल नहीं मिलता था, बहुत समय के बाद आम का पेड़ फल देना शुरू करता था। और जब फल मिलता था तब तो दादाजी तो जीवित ही नहीं होते थे, पोते खाते थे। तो दादा बोए और पोते खाए, वो मिसाल देते हैं कि एक बार एक बूढ़ा आदमी आम का बीज बो रहा था, तो उससे किसी ने पूछा, बाबूजी आप इस उम्र में आम का बीज बोते हो, आप कब इसका फल खाओगे? तो कहा कोई बात नहीं, मेरे दादाजी ने बोया था जो काम के फल माना पेड़, वो मैं खा रहा हूँ, अब मैं बोऊंगा तो मेरे पोते खाएंगे, इसमें क्या है। दादा बोए और पोता खाए। लेकिन कर्म का बीज ऐसा नहीं है कि दादा बोए और पोता खाए, ऐसा नहीं होगा। एक चुटकुला सुनाते हैं कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था, आप खूब पेट भर के खाइए और आपका बिल आपके पोतरे भरेंगे। खूब पेट भर के खाइए तो आपका बिल आपके पोतरे भरेंगे। तो एक व्यक्ति अंदर गया, बहुत खाया पिया और बिल आ गया उसके सामने। उसने कहा भाई आपका तो लिखा हुआ है कि आप खूब खाइए आपके पोतरे भरेंगे। तो कहता है बाऊजी ये आपके दादाजी का बिल है, समझ गए ना, आपके दादाजी ने खाया था वो बिल आपको चुकता करना है। आपका तो पोतरे आपके भरेंगे, पर आप भी तो किसके पोतरे हो, तो आपके दादाजी ने खाया था। अब बिल तो उसका ही था, कोई दादाजी का थोड़ी था, लेकिन ये आकर्षण करने का एक तरीका होता है। तो इसीलिए ये कर्म का बीज आपको पाना है, लेकिन इतना सहज नहीं है जैसे आम का बीज डाला और आम का फल मिला, कोई भी पाए, ऐसा नहीं है, आपको ही पाना है। पर किस समय किस रूप में कहाँ कैसे ये तुरंत पता नहीं चलता है। इसलिए कर्म सिद्धांत से हमें शिक्षा ये लेनी है कि आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हैं। ये आप अपने प्रति ये शिक्षा लें। अगर आप चाहते हो कि आपको सब सुख दे तो आप भी सबको सुख दो। अगर आप दुख देंगे और आप चाहेंगे कि सुख मिले, ये मुश्किल है। हो सकता है वो सुख मिले भी, लेकिन ये आपके कोई पूर्व का फल है जो आपको मिल रहा है। पर अभी जो दुख दे रहे हो वो संचित हो जाएगा, वो फिर आगे मिलेगा, क्योंकि तुरंत मिले ये जरूरी नहीं है। इसीलिए कर्म सिद्धांत से हमें शिक्षा ये बहुत लेनी होगी। हमारे कर्म ही कारण हैं जो सही समय पर कर्म फल के रूप में सामने आते हैं, पर वो किस समय आएंगे ये पता नहीं है, क्योंकि उसकी गहराई कितनी है वो तुरंत पता नहीं चलती है। इसलिए ये कर्म का शाश्वत एवं अटल सिद्धांत है कि अगर आप करोगे तो आपको ही मिलेगा, आप ही पाओगे, दूसरा नहीं। तो इसीलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार आपको ही मिलना है, पर वो कितना मिलेगा, किस रूप में, वो तुरंत क्यों नहीं पता चलता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी अंगुली लेकर के हवा में लकीर खींचते हैं। अब हवा में लकीर तो खींच गई, लेकिन आपको पद दिखाई तो दी नहीं, क्योंकि हवा भी दिखाई नहीं दे रही, लकीर कहाँ दिखाई देगी। पर आपने कर्म तो किया ना। लेकिन इसी अंगुली को लेकर आप पानी पर लकीर खींचते हैं, तो पानी तरल पदार्थ है, वो लकीर कुछ समय के लिए दिखाई देगी, कर्म वही है, लेकिन फल में वो दिखाई देगी थोड़े समय के लिए, फिर मिट जाएगी। लेकिन आप यही अंगुली लेके एक सागर के किनारे जाकर रेत के आगे आप रेत पर लकीर खींचते हैं, वही कार्य है, वही कर्म है, पर वो लकीर रेत पर कुछ और टाइम टिकी रहेगी। जब तक कोई पैर न रखे या हवा न चले तब तक वो दिखाई देगी, पानी से तो ज्यादा समय दिखाई देगी। परंतु वही अंगुली से आप एक नोकीली चीज लेकर के पत्थर पर लकीर लगाएं, वो तो सालों साल वो लकीर पर, लकीर जो पत्थर पर लगाई वो दिखाई देगी। अब कर्म तो वही है, पर कितना अंतर हो गया परिणाम में, लकीर ही लगी, वही निकली, पर फर्क कितना हुआ। इसीलिए कर्म सिद्धांत के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि जैसा बीज वैसा फल, तो बीज और फल पाने के बीच के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसा बीज वैसा फल, ये तो कॉमन बात है। दूसरा, बीज एक और फल अनेक, ऐसा भी होता है। अब आपने एक बीज बोया, लेकिन जब फल मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, बीज बोते समय थोड़ी पता चलता है कि कितने फल मिलेंगे। कई ऐसे फल के पेड़ होते हैं जो सीजन में फल देते हैं, कई तो वो देते ही रहते हैं, सारा साल भी देते रहते हैं, कई एक बार बीज डाला तो एक ही खेप होती है बस, फिर दोबारा डालना पड़ता है, कई एक बार नहीं दो बार दे देते हैं। तो क्या है, सब अलग अलग है, तो बीज अलग प्रकार के, तो उस हिसाब से फल भी उनका भी अलग ही स्वरूप होता है। लेकिन जैसा बीज वैसा फल, वही चीज मिलेगी, पर कितनी मिलेगी ये तुरंत पता नहीं चलता। और तीसरी बात है कि बीज बोने और फल पाने का समय अलग होता है, ये नहीं कि अभी बोया अभी पाया, ये नहीं होता। इसलिए इन तीनों सिद्धांतों को समझने के बाद, पहला सिद्धांत कोई बड़ी बात नहीं है समझना, आप बबूल बोएंगे तो बबूल मिलेगा, आम बोएंगे तो आम मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, ये साधारण बात है। परंतु जो दूसरा सिद्धांत है कि बीज एक फल अनेक, कई ऐसे बीज हैं जो बहुत फल देते हैं, तो कई कर्म ऐसे होंगे जो उनका फल लगातार मिलता ही रहेगा, अनेक जन्म तक भी वो मिलता रहेगा, अगर इतना गहरा वो कर्म है तो। केवल एक जन्म में नहीं मिला या उसी समय मिला, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मिलता ही रहेगा, क्योंकि वो संस्कार में भर गया। जैसे कई लोग होते हैं संस्कार उनका ऐसा है जो हमेशा शक करते हैं, अनुमान लगाते हैं, वहम करते हैं, बस उनका संस्कार ही ऐसा है। कुछ भी बात उनसे कहो वो कहेगा हाँ मुझे पता है ऐसे क्यों का, क्योंकि शक, अनुमान, वहम और शक, ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो मनोरोग है। ये तन के रोग नहीं है, ये मन के रोग है, और ऐसे ये मनोरोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो उस आत्मा के कर्म ही ऐसे हैं। वो खुद भी समझता है कि मैं अपने ही कर्मों से दुखी हो रहा हूं, दूसरा कोई मुझे दुख नहीं दे रहा है। हम भी उनको यही कहेंगे भाई मैंने तो कुछ भी नहीं आपके लिए कहा, मेरे अंदर में आपके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, मैं अच्छा ही सोच रहा हूं। नहीं तुमने ये कहा, तुमने ये किया, वो किया, वो मनगढ़ंत बातें बना देगा और दुखी दुख भी खुद को भी देगा और दूसरों को भी देगा। आप कहेंगे मैंने तो दुख नहीं दिया, तो ये क्यों ऐसे समझता है कि मैंने दुख दिया, पर वो अपने कर्मों से दुखी है, आपके कर्म के कारण दुखी नहीं है, क्योंकि वही संस्कार उसका बन गया है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि वहम की बीमारी की दवा वो लुकमान एक हकीम दिल्ली में हुआ करता था, बहुत ही प्रख्यात हकीम था, सब बीमारियों की दवा थी लेकिन वहम की बीमारी की दवा उसके पास नहीं थी। तो इसीलिए वो कितने जन्म तक भी चलता रहेगा वो मिटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा गहरा उसका वो कर्म है। इसीलिए एक बीज लेकिन कितने उसके फल। फिर तीसरा है कि बोने का समय अलग होता है, तुरंत तो काटेंगे नहीं ना, फल तो मिलेगा नहीं, इसीलिए किस समय कहाँ कैसे किस रूप में ये तुरंत पता नहीं चलता है। इसलिए मनुष्य कर्म की गति को मुश्किल से समझता है, परंतु बीज बोने और फल पाने तक एक यात्रा है, ये भी एक महत्व की यात्रा है। अब आपने आपके पास बीज तो बहुत अच्छा है, परंतु जिस धरनी में आपको बीज डालना है वो धरनी पर हल चलाया ही नहीं है, खाद डाली ही नहीं है, उसको ठीक किया ही नहीं है और ऐसे बीज डाल दिया। आपने सोचा मैं किसी को दान कर रहा हूं, दान तो बहुत सुंदर चीज है, बड़ी चीज, महान चीज है दान करना, दानी कहलाओगे, लेकिन जिस पात्र को आप दान कर रहे हो वो पात्र कितना योग्य है, कितना उसको आवश्यक है आपके दान का, ये भी बहुत जरूरी है समझना। अपने नाम मान शान के लिए आप दान करते हो, वो पुण्य कहाँ बनेगा, पात्र भी तो चाहिए तभी तो। अगर कुपात्र होगा तो आपका दान तो कहीं पाप के रूप में न चला जाए, सुपात्र हो, योग्य हो, आवश्यक अनुसार हो, तब वो पात्रता देखनी होगी, तब आपका बीज भी सफल होगा। इसीलिए धरनी भी उपजाऊ चाहिए, तब उसमें आप बीज डालेंगे तो फल मिलेगा। लेकिन चलो उपजाऊ की भी योग्य है, वो आवश्यक है, पात्र है, और आपने दान किया, पर उसके बाद फिर एक बार तो कर लिया, चलो बीज डाल दिया, पर फिर तो पानी भी तो देना पड़ेगा ना, पानी दिया ही नहीं, एक बार दिया तो क्या हुआ, बीज डाल दिया, जल भी तो देना होगा, सींचना भी होगा, फिर सींचने के बाद उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, उसके फल भी पकने देना होगा, ये सब बातें भी तो देखनी होती, तभी तो फल मिलेगा। चलो मिल भी गया फल, उस वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा भी, बहुत कुछ किया आपने, बहुत किया, परंतु हो सकता है कुछ हिसाब किताब था वो पूरा हो गया, और आप कहेंगे मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मुझे पूछा भी नहीं, पर ये तो आपने हिसाब किताब चुकतू कर लिया, कई बार ऐसे भी होता है, तो इसका कितना दुख होगा आपको कि ये क्या, हाँ मैंने इतना किया और इसने पूछा भी नहीं, धन्यवाद भी नहीं किया, और आवश्यकता मुझे चाहिए हो तो मुझे मदद भी नहीं किया, मैंने कितना किया। अब ये भी सब कर्म की गति है, उस जो आपने किया वो क्या पता उसने आपको किया होगा किसी जन्म में और आपने उसको वापस किया, तो अभी वो क्यों करेगा, हिसाब किताब चुकता हो गया। अब हमने सोचा कि मैंने तो बहुत किया इनके लिए, पर चलो फल मिला। मान लीजिए अभी मैं स्वस्थ हूँ, इस उम्र में स्वस्थ हूँ, अवश्य कोई अच्छे कर्मों का ये फल है, धन की कोई कमी नहीं है, ये अच्छे कर्मों का फल है, दिमाग सही है, ठीक है, ये अच्छे कर्मों का फल है, संबंध अच्छे हैं, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। अब ये जो मुझे फल मिला है, ये वर्तमान फल है किसी पूर्व का, ये ऐसे ही नहीं है, भाग्य है ये भी। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंधों का सुख, ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये जो वर्तमान में अगर किसी को ये भाग्य है, अवश्य बहुत ऊंची चीज है, उसके कर्म अच्छे हैं जिसके कारण ये भाग्य मिला है, लेकिन इस भाग्य को अगर यूं ही खा लिया और आगे कुछ इस भाग्य के अनुसार आगे नहीं बनाया तो ये तो यही खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर ये तन तंदुरुस्त है तो इस तन से सेवा करो, दूसरों की दुआएं लो। अगर आपका दिमाग अच्छा है, ठीक है, आप ज्ञानी तो आत्मा है, तो दूसरों को ये ज्ञान दो, समझ दो, पहचान दो, उनको भी महान बनाओ। धन है तो धन से भी सेवा करो, कितना खाओगे, कितना चाहिए हमें। संबंध अच्छे हैं तो वो संबंध अच्छे बनाकर रखो, किसी से दुश्मनी मत करो। तो ये जो वर्तमान में फल है, ये फल आगे भी चलेगा, क्योंकि आप बीज भी साथ साथ बो रहे हो। तो जो फल आपको मिला वो खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, तो दुआएं मिलती रहेगी, आपका आगे का भी पुण्य बनता रहेगा। परंतु फल मिला और न कुछ खुद खाया न किसको खिलाया, जैसे वो धनवान होते हैं लेकिन इतने कंजूस होते हैं, जो पाई पाई को भी देखते रहते हैं, डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। मानो अच्छी चीज में तो जितना धन लगे अच्छा है, वो तो बीज डालना हुआ, लेकिन इतने कंजूस जो अपने लिए भी खर्च नहीं करेंगे, और जब मरते हैं तो करोड़ों छोड़ के तो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे पोते क्या करते हैं कौन जाने, वो तो एक साल में उड़ा सकते हैं। और इसने, दादाजी ने तो इतना, इतनी कंजूसी से इतना उसको रखा, पर पोत्रों ने बच्चों ने क्या कर दिया, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। तो हम देखते हैं कि फल है तो खाओ और खिलाओ, खुद भी सुख प्राप्त करो और दूसरों को भी सुख दो, तो दुआएं जो मिलेगी उससे आपका भाग्य जमा होता ही रहेगा। अब ये बीज बोने और फल पाने तक की यात्रा को समझना है, ये भी कर्म की गति है, बहुत बड़ी गति। और कर्म तो बीज है, लेकिन उनसे भी और सूक्ष्म बीज है हमारी सोच। हम सोचते क्या है, सोच रूपी जो बीज हम वातावरण में फैलाते हैं, वैसी ही हमारी वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति के अनुसार ही अंदर की भावनाएं पैदा होगी, वैसे ही हमारी वाणी निकलेगी, वैसे ही कर्म होंगे, वैसे ही आदतें बनेगी, और वही आदतें हमारा व्यक्तित्व बनाएगी, और वही भाग्य निर्धारित करेगी आगे के लिए। इसीलिए मुख्य बीज तो हमारी सोच है। इसलिए किसी ने ठीक कहा है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। तो सोच रूपी बीज को हमें महत्व देना है। अपने विचारों पर ध्यान दो, आप क्या सोच रहे हो, सोचने से भी पहले ये सोचो मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि एक दिन वो शब्द बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि सोचते कुछ और हैं, बोलेंगे कुछ और तो वो चलेगा, सादा समय नहीं चलेगा, वो मुख तक आ ही जाएंगे। और आप जो शब्द बोलते हो उस पर भी ध्यान दो, फिर वो एक दिन कर्म बन जाएंगे। अगर वो कर्म नहीं करना है तो वो बोले भी नहीं, बोलना नहीं है तो सोचना भी नहीं है। और अगर वो कर्म बन जाएंगे तो कर्म वो फिर आपकी आदतें बन जाएंगी। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, कहीं वो ऐसी आपकी आदतें तो नहीं बन रही है। और अगर आदतें बनती जाएगी तो वही आपका व्यक्तित्व होगा। तो अगर व्यक्तित्व अपना केवल बाहर सूट पैंट पहना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गॉड मेड मैन एंड टेलर मेड अ जेंटलमैन। टेलर ने आपको बहुत अच्छा सूट कोट बना के दिया, जेंटलमैन बन जाएंगे। लेकिन वो जेंटलमैन जिसने सूट कोट पहना, वो पहले अपने आप से पूछे, कोट पैंट तो पहन लिया, बड़ा व्यक्तित्व निखार हुआ उसका, पर वो पूछे अपने आप से, मैं कितना जेंटल हूं। जेंटलमैन तो बन गया, जेंटल कितना हूं, माना मेरे अंदर शिष्टता कितनी है, मेरा अंदर व्यवहार शुद्धि कितनी है, वो भी तो बहुत जरूरी है। इसीलिए और वही जो आपका व्यक्तित्व है, वही आपका भाग्य निर्धारित करेगा। आत्मा वही संस्कार लेकर के जाएगी आगे के लिए। इसलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना होगा। हम ही अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे कर्मों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। कोई अगर कहे इसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, उसने कुछ भी किया, उसका कर्म उसका फल वो जाने, पर मैंने क्या किया? किसी ने तो मुझे गाली दी और मैंने थप्पड़ मार दी, किसने मुझे थप्पड़ मार दी और मैंने बंदूक लेकर के उसको गोली मार दी, तो थप्पड़ मारने वाले का दोष नहीं होगा, गोली मारने वाले का दोष होगा। गाली देने वाले का इतना जो दोष नहीं होगा जितना थप्पड़ मारने वाले का दोष होगा। गाली तो हवा में उड़ गई, लगी कहाँ? समझो कोई मुझे गाली भी दे, पर वो लगी कहाँ? तन को तो लगी नहीं, पर थप्पड़ तो तन को लगेगी। कोई कहे कि नहीं गाली तो मन को लगी, भले तन को नहीं लगी, पर मन को लगने दी क्यों? मन के अंदर गई कैसे? गई तो कानों से ही गई होगी ना, तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल क्यों नहीं दिया? इसलिए कोई दूसरे पर दोष धर नहीं सकता, इसने ऐसे किया ना इसलिए मैंने किया, ये कोई बहाना नहीं है। उसने कुछ भी किया पर मैंने क्या किया? इसलिए कर्मों का फल भोगने की जिम्मेवारी भी उसी की है जिसने किया है। तो अगर हम कर्मों को समझें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन सकता है, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है, वही हमारी सच्ची पूंजी है। हम उस धन के पीछे कितनी मेहनत करते हैं और कर्म रूपी पूंजी के लिए कोई मेहनत नहीं, क्या हम कर रहे हैं? क्योंकि यही सच्ची पूंजी आत्मा के साथ जाएगी, जन्म जन्म यही साथी बनेगी। तो कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता है, ये अवश्यंभावी है। इसलिए कर्म को हमें महत्व देना है, कर्म से हमें बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है। शिक्षा क्या लेनी है? कर्म से डरना नहीं है। अगर कोई मैंने गलत कर्म किया है तो हम डरते रहें कि हाय मुझे पता नहीं क्या परिणाम निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, डरने के बजाय हिम्मत से सामना करो, कर्म तो किया है ना। परंतु हम उससे अगर डरते रहेंगे, कर्म फल वो अच्छा या बुरा परिणाम है जो आपके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर प्राप्त हुआ है, न्याय आपके कर्मों के आधार पर होता है। न्यायाधीश जब सजा सुनाता है तो सब बताता है, इसने ये 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 किया, ये प्रूफ है, इसलिए आपको ये सजा मिलेगी। और वो मुजरिम, वो जो खुद व्यक्ति समझता है हाँ मैंने ये किया है, उसका सिर नीचे हो जाता है, वो छिपा नहीं सकता है। परंतु इस कर्म से हम प्रेम करें, क्या प्रेम करें? ये कर्म फल एक उपहार है, उपहार के रूप में है ये कर्म का सिद्धांत। क्योंकि जो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए शिक्षा देता है, और वो तब तक शिक्षा देता रहेगा जब तक आप उससे कुछ सीख नहीं लेते, ये समझ लो। जब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक वो आपको शिक्षा देता रहेगा।
उसका फल आपको मिलता रहेगा। इसीलिए भय करने की बजाय कर्म सिद्धांत से आप शिक्षा लीजिए कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। इसलिए दूसरे आपसे कैसा भी व्यवहार करे, आप वो उनके कर्म है, और आप उनसे कैसा व्यवहार करते हैं वो आपके कर्म बन जाते हैं। इसलिए अपने को हम देखें, मैं कैसा व्यवहार करता हूं। इसलिए दूसरे को दोष देने की बजाय कर्म की गहन गति को हमें समझना होगा कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की शक्ति प्रदान करती है कर्म की गति। हाँ, मैंने किया है, परिस्थिति का सामना करो। अगर कोई गलती की है तो सच बताओ, और हो सकता है कि सच बता देंगे तो आपकी आधी सजा माफ हो जाएगी। गलत काम किया है तो सच बताना चाहिए, और अगर अच्छा काम आपने किया है तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। कोई आपकी प्रशंसा भी करे तो भी आप स्वीकार न करो, ये तो ईश्वर की शक्ति थी, उसने करवाया। इसलिए हम कहते हैं ना, करण करावना पे आप मानुष के नाही हाथ। ये भावनात्मक सत्य है कि हम उस भावना में रहे कि ईश्वर ने मुझसे अच्छे कर्म कराए हैं, शक्ति उनकी थी। पर गलत कर्म है ये नहीं कि उसने शक्ति, उसकी शक्ति थी। कर्म तो मेरे ही है, फल तो मुझे ही मिलना है। तो अच्छे कर्म है तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, फल अपने आप मिलेगा। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्। कर्म पर पूर्ण अधिकार है आपका, फल उन पर छोड़ दो। पर अगर गलत कर्म किया तो सच बताओ। अब हम लोग उल्टा करते हैं, अच्छा कोई कर्म किया तो सौ लोगों को वर्णन करेंगे, देखा मैंने ये किया, ये मैंने किया है, कितना वर्णन करेंगे, अभिमान दिखाएंगे। और कोई गलत किया तो किसी को पता भी चल गया, कहेंगे बताना नहीं, चुप चुप बताना नहीं, बताना नहीं तो नहीं बताएंगे, बढ़ता जाएगा। आखिर सजा तो मिलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। धर्मराज पुरी में भी वो सजा आपकी निश्चित ही होगी। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर के घर में देर है लेकिन क्या नहीं है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये देर जरा खलती है, कई समझते हैं कि इसने इतना किया है तो सजा क्यों नहीं मिलती है इनको। लेकिन देर में कुछ राज होगा। इसीलिए इस कर्म की गति को समझ करके हमें बहुत अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए हम दूसरों को दोष देने की बजाय हर परिस्थिति का सामना सहज करें। अगर मैंने कोई भी गलती की है, हमारी जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी को समझ करके हम उसका सामना करें। पर कई कहते हैं ये साख सब क्या बहन जी, कर्म कर्म छोड़ो, हमें तो संसार में जीना ही नहीं है, हमें तो रहना ही नहीं है, ये भगवान दुनिया क्यों तुमने बनाई, ये सब इतना ज्ञान की हमें क्या जरूरत है, ना मेरे अंदर ये ताकत है ये सब समझने की, बस हम तो सन्यासी बन जाएंगे। भगवान कहते ये भी नहीं, आप कर्म से भाग नहीं सकते हो, कर्म का सन्यास हो ही नहीं सकता है। हमें सिर्फ कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। कर्म का सन्यास कैसे होगा, कोई कहे मैं कर्म सन्यासी हूं, कुछ भी नहीं करता हूं, परंतु बैठे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, ये भी तो कर्म ही है ना, क्रिया तो है ना, तो कैसे कहेंगे मैं कर्म सन्यासी हूं। कर्म सन्यासी कोई बन नहीं सकता है, लेकिन कर्म योग सन्यासी जरूर बन सकते हैं, जो गीता के अंदर वर्णन है, कर्म करते परमात्मा से योग और बुराइयों का सन्यास, ये जरूर हमें परमात्मा सिखाते हैं। अब उसके अनुसार जो कर्म हम करते हैं, ये कर्मों के लिए चार प्रकार की वृत्तियां हैं जिसके अनुसार कर्म होते हैं। हम किसी व्यक्ति को कहते ये तो राक्षस है, बिल्कुल दानव राक्षस है, किसी के लिए कहते हैं ये तो देवता है, किसके लिए कहेंगे ये तो साधारण इंसान है, और किसके लिए कहेंगे ये तो बहुत बड़ा योगी है, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। क्या है अंतर उनकी वृत्ति में, क्योंकि उसी अनुसार कर्म भी बदलते हैं। जो दानवी वृत्ति वाला होगा उसकी वृत्ति कैसी होगी, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, अपनी चीज से तो दूर नहीं होगा, इतना मोह होगा, लेकिन दूसरे की चीज में भी लालच रखेगा, लोभ रखेगा और किसी न किसी तरीके से उसकी चीज भी जब्त करना, ये उसका कर्म धर्म होगा। ये दानवी वृत्ति वाला है। मानवी वृत्ति वाला इतना बुरा नहीं होगा, वो कहेगा ठीक है मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, तेरा मुझे नहीं चाहिए पर मेरा नहीं दूंगा, क्योंकि खुद की चीज में तो मोह है। दानव कहेगा मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, तेरा सो मेरा, मेरे हाथ न लगा। मानव फिर भी थोड़ा ठीक है, भाई भाई में झगड़ा हुआ, पार्टीशन हो गई, दोनों अलग हो गए, तो मेरे पास नहीं आना, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, तुम मेरे से कुछ नहीं मांगना, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगूंगा। भले दुश्मन भी नहीं है लेकिन दोस्त भी नहीं है, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, भाई भाई होते हुए भी। पर दैवी वृत्ति क्या है, दैवी वृत्ति है मेरा सो हम सबका, ये हम सबका है, हर एक को अधिकार है, हम अवश्य हर एक को मदद करें जितना हो सकता है, अगर मेरे पास वो क्षमता है क्यों नहीं मदद करें, ये भाग्य ही बनेगा, पुण्य ही बनेगा। और योगी की वृत्ति तो इनसे भी ऊंची है, मेरा भी कुछ नहीं तेरा भी कुछ नहीं, ये सब ईश्वर का है, ये समझ कर हम चलते हैं। आरती में तो सभी यही गाते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कितना सुंदर ये आरती हम गाते हैं। लेकिन आरती गाने के बाद ये सोचते हैं कि ये तो सब ईश्वर का है, मेरा नहीं है, बस आरती गाई और पूरा हो गया सब कुछ। लेकिन नहीं, ये जीवन का एक अंग बन जाए कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब प्रकृति की दी हुई चीज है, प्रकृति को वापस करनी है। जिस मकान में आज हम रह रहे हैं, मेरे जाने के बाद दूसरा कोई रहेगा, मेरे से पहले कोई और था, या ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की चीज है। तो जब ये हमारी भावना होगी तब योगी कहलाएंगे। तो उस अनुसार चार प्रकार के कर्म है। एक कर्म है पाप कर्म, जो मेरा सो मेरा तेरा सो मेरा कहते हैं, वो आसुरी वृत्ति वाले पाप कर्म करते हैं। अब क्या होता है पाप कर्म? दूसरा है पुण्य कर्म, तीसरा है श्रेष्ठ कर्म और चौथा है अकर्म। ये चार प्रकार के कर्म हैं। दुनिया में तो आज हम केवल दो प्रकार के कर्मों को ही जानते हैं, क्योंकि इस समय कलयुग में दो प्रकार के कर्म चलते हैं, पाप या पुण्य। कई कहते कैसे पता चले ये पाप है या पुण्य, उसको भी नहीं समझते हैं। लेकिन पाप और पुण्य के बीच में एक डिमार्केशन लाइन है, उस लाइन को अगर हमने समझ लिया तो पाप और पुण्य का अंतर समझ सकेंगे। बहुत सुंदर किसी ने कहावत कही है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ है अभिमान। तो पाप कर्म कैसे होता है? अभिमान के वश। और अभिमानी व्यक्ति हर समय मैं और मेरा, मैं मेरा मैं मेरा ही करता रहता है। कोई कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन जो देह अभिमान में होगा वो तो हर वक्त झूठ बोलता है। कैसे? अभिमानवश मैं कहता है, और ये कितना बड़ा झूठ है। मैं हूं आत्मा, और शरीर के अभिमान में आकर के मैं सुंदर, मैं धनवान, मैं फलाना, मैं की रट लगाए हुए रहता है। तो जितनी बार मैं अभिमानवश कोई कहता है वो पाप का खाता बनाता है। हम कहां ये समझ रहे हैं। और दूसरा पाप का दरवाजा है मेरा। कोई कहता है कि मैं चोरी कभी नहीं करता, मैं दूसरे की चीज कभी नहीं उठाता, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, तुम्हारी चीज मैं क्यों उठाऊंगा। लेकिन मेरा भी मेरा कहना ये चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो शरीर से ये भी पूछेगी कि मैं जाऊं? नहीं पूछेगी। हिसाब किताब पूरा हुआ, आत्मा एक सेकंड में आत्म पंछी उड़ जाएगा। ये शरीर के लिए कितना नहीं किया आत्मा ने, कितना मोह रखा, लेकिन हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, तो दूसरे क्या मेरे होंगे। इसीलिए जितनी बार हम मेरा मेरा मोहवश, लोभवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, नफरतवश, कई कारण हो सकते हैं मेरा मेरा कहने का, वो सब पाप के खाते में जाते हैं। तो देह अभिमान पर आधारित कोई भी नकारात्मक विचारों के वश किए हुए कर्म ये पाप के खाते बनते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, ये सारी जो मनोवृत्तियां विकारों के आधार पर है, ये सब पाप का खाता बनाती है। क्योंकि इनसे खुद को भी दुख मिलता है, दूसरे को भी दुख मिलता है, पाप का परिणाम दुख है। कोई भी व्यक्ति क्रोध करके सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये पाप का खाता बनता है। और पुण्य की परिभाषा क्या है? अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, नेत्रदान, आज समाज में बहुत सारे पुण्य के कर्म हो रहे हैं। स्थूल चीजों का दान करना ये पुण्य बनता है। लेकिन इस पुण्य के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। पुण्य कब बनता है? कहा जाता है गुप्त दान महाकल्याण। पुण्य तब बनता है जब आपका दायां हाथ दान करे इतना गुप्त हो जो बाएं हाथ को भी पता न चले कि इस दाएं हाथ ने दान किया है, इतना गुप्त हो। अगर अभिमानवश किया दान तो वो पुण्य कहां बनेगा? वो अभिमान में वो पुण्य खत्म हो गया। इसीलिए दान की महिमा तो परम अपार है, लेकिन अभिमानवश दान नहीं करना है। नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावतें प्रसिद्ध हो गई है। दरिया इतना बड़ा है, जितनी नेकी करो उतनी कम है, इसलिए कई कहावतें प्रसिद्ध हो गई, नेकी और पूछ पूछ। हाँ, नेकी करनी है तो पूछते क्यों हो? करो, क्योंकि अगर कल तक आपने छोड़ा रखा कि भाई कल करेंगे या किसी से पूछेंगे, कल उसकी शक्ति कम हो जाएगी। हाँ, गलत काम के लिए 10 बार सोचो, सोचने से पहले भी सोचो कि क्या सोच रहा हूं। पर नेकी का काम है, सबके भलाई का काम है, तो उसमें क्या सोचना, वो तो तुरंत करना चाहिए। इसीलिए पुण्य कर्म की परिभाषा है जरूरतमंदों को स्थूल रूप से मदद करना। परंतु दूसरी बात जैसे बताई, पात्र भी योग्य हो। अगर जरूरत है ही नहीं, अपने नाम मान शान के लिए कर रहे हैं कि मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, किसने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है मैं उनसे ज्यादा दूंगा ताकि मेरा नाम उनसे भी ऊपर आ जाए, अब ये तो एक कॉम्पिटिशन हो गई, इसमें दान कहाँ हुआ। और फिर जिस कार्य के लिए दान किया भी, वो सचमुच वो कार्य हुआ नहीं हुआ वो भी कुछ पता नहीं, इसीलिए वो तो सब निष्फल गया। इसलिए जरूरतमंदों को स्थूल रूप से भी मदद करना, ये बहुत बड़ा दान पुण्य का कर्म होता है। पर उनसे भी श्रेष्ठ है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म किसको कहेंगे हम? जो कर्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के किया जाता है, मैं आत्मा, आप आत्मा से बात कर रहे हूं। कई हमसे पूछते हैं, बहन जी आप इतना लेक्चर देते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटा लेक्चर देते हैं, सवेरे भी दिया, आप भी दिया, आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? हमसे पूछते हैं लोग, आप क्या समझते हो कितनी तनख्वाह मिलती होगी? मिलती है तनख्वाह कि नहीं मिलती है? मुफ्त में करते हैं, मुफ्त में। हम कहते हैं ये श्रेष्ठ कर्म का इतना ऊंचा भाग्य बनता है जो हम दो युग तक खाते रहेंगे, इतना मिलेगा हमको। एक खाली 4-5 सौ 10 हजार यही कमाई नहीं है, अभी किया अभी खाया नहीं। श्रेष्ठ कर्म की तो पूंजी आत्मा साथ ले जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना। कई कहते आप थकते नहीं है, हम कहते थकावट तब हो जब अभिमान वश हम करें, या कुछ रटा रटाया हो जो हम करें तो अंदर से निकलता है, खुशी होती है कि इतनी सारी आत्माओं को ईश्वर का ज्ञान मिलेगा तो मुझे तो खुशी होती है। खुशी में थकावट कहाँ से होगी? ये तो परमात्म ज्ञान है जो इतना बड़ा भाग्य है हमारा। इसलिए कई लोग हम लोगों को कहते हैं, बहन जी आप कितने भाग्यवान हो, आप इतने ऊंचे स्थान पर रहते हो, कितनी ऊंची सेवा करते हो, आपका बड़ा भाग्य है। और कोई फिर बिल्कुल नेगेटिव रूप में इसको देखते हैं, कहते आप लोगों ने तो बहुत त्याग किया है, हमारे से ये सब नहीं होगा, आप लोग तो देखो सफेद सफेद पहनते हो, कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं, पिक्चर नहीं देखते, ये नहीं, कुछ नहीं, ये तो भाई ये तो हमारे से नहीं होगा, ये तो बड़ा त्याग है। और तो कोई इसको भाग्य समझ रहे हैं, आप क्या समझते हो, त्याग है या भाग्य है? हाँ? भाग्य है बिल्कुल, लेकिन ये भाग्य का आधार क्या है? त्याग। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता, ये कर्म की गति है। आप इस हाथ से दो तो इस हाथ से मिले, अगर देना ही नहीं जानते तो लेंगे क्या? इसलिए त्याग भी बहुत जरूरी है भाग्य प्राप्त करने के लिए। एक बीज का भी त्याग करते हैं, धरनी में डालते हैं, तभी तो इतना भाग्य मिलता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या हुई? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की स्मृति में कर्म किया हुआ। कर्म तो कर रहे हैं हाथों से, लेकिन आत्मा की स्थिति है, आत्मा की दृष्टि है। ये नहीं कि ये धर्म वाला, ये जाति वाला, ये भाषा वाला, इन हदों में हम नहीं आते। एक परमात्मा के बच्चे हैं सब, आत्मा आत्मा भाई भाई है। इस हैसियत से ये ईश्वरीय सेवा की जाती है, इसका भाग्य बहुत ऊंचा है। कोई भी कर्म, किसी का भी निष्काम कर्म होता ही नहीं है, फल तो मिलेगा, लेकिन अगर कामना के साथ किया तो हो सकता है फल कम हो जाए। निष्काम माना निस्वार्थ भावना से किया, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी तो बस सेवा का ही भाग्य है। सेवा भी एक भाग्य है, सेवा ही मेवा है। सेवा करो तो मेवा मिले नहीं, सेवा ही भाग्य है कि इतनी ऊंची सेवा भगवान ने हमें दी है। और इस आधार से जो हम कर्म करते हैं वो सब आत्मा के अंदर संचित होते जाते हैं, हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये तुरंत इसका फल है। कई लोग कहते हैं आप लोग आत्मा परमात्मा की बातें करते हो, अच्छी मूल्यों की बातें करो, बस आत्मा परमात्मा क्या करते हो? पर ये मूल्य भी किसमें हैं? आत्मा में ही तो है, धारण कौन कर रही है? आत्मा ही तो कर रही है। और इन मूल्यों का स्रोत कौन है? परमात्मा है, उनसे ही हम मांगते हैं। तो जब तक आत्मा और परमात्मा की पहचान नहीं है अथवा ये योग नहीं है, तब तक हमारे कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होंगे। इसीलिए अब इस राजयोग के माध्यम से हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना रहे हैं, और इन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से अवश्य श्रेष्ठ फल मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? चरित्र रूपी धरणी हमारी श्रेष्ठ बनती है, साथ साथ हमारे श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज डालते हैं धरणी में, संयम नियम की खाद भरती है इस धरणी में, और साथ साथ अच्छे संस्कारों रूपी वातावरण बनता है, अच्छा माहौल रूपी वायु, ये सब यहाँ मिल रहे हैं। और इसको पाने के बाद अनुभव होता है तो श्रेष्ठ कर्म का परिणाम बहुत ऊंचा है, जिसके लिए कहा गया नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। थोड़ा धीरज रखो, अच्छी करनी का फल बहुत ऊंचा है। नर नारायण बन सकता है, नारी लक्ष्मी बन सकती है, जो हम थे मानव था, जिन देवताओं को हम मंदिरों में पूजते हैं भारत में, ये हमारी ही संस्कृति है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, वो सब 33 करोड़ देवी देवताएं कहाँ चले गए, किसी ने सोचा? पूजा तो करते हैं, गायन करते हैं, वो हम ही तो थे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, खुद ही हमने ही हम अपने पूज्य स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, तो वो कहाँ चले गए? यहाँ ही इसे डायमंड हॉल में बैठे हैं, हम तो ये कह रहे हैं। आप लोगों का अगर मैं नाम पूछूं तो कईयों के कितने सुंदर सुंदर नाम होते हैं, बहनों के नाम लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, हाँ ये नाम होते हैं, कई बहुत सुंदर नाम है, भाइयों के भी नारायण राम, हाँ कई सुंदर नाम होते हैं। कलयुग में तो कई बार डबल डबल नाम मिलते हैं, यहाँ लक्ष्मी और नारायण तो अलग अलग हैं, पर कलयुग में तो एक ही व्यक्ति का नाम लक्ष्मी नारायण भाई हो सकता है, राधे कृष्ण भाई हो सकता है, राम कृष्ण भाई हो सकता है, वहां राम अलग है कृष्ण अलग होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति के डबल नाम। परंतु पूछो उनसे, इतना नाम तो बहुत सुंदर है, वो गुण भी हैं, कहेंगे बहन जी शर्मिंदा न कीजिए, ये तो माँ बाप ने रख लिया, गुण कहाँ है वो। लक्ष्मी माना जिनके अंदर में अच्छे लक्षण हो, वो लक्ष्मी है। तो अच्छे लक्षण वाली हो स्त्री, फिर उसका वर तो नारायण होगा। अच्छे गुण वाली बहु तो चाहिए, पर बेटा भी तो नारायण जैसा हो, तभी तो लक्ष्मी उसको वरमाला पहनाए। हाँ, घर में बहु आती है, कहते लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी का मतलब केवल धन लाई क्या? धन लाई क्या? दहेज लाई, इसी को आप लक्ष्मी कहते हो। लक्षणों वाली जो घर को स्वर्ग बनाए, न कि दो भाइयों को फिटाए और घर अलग कर दे, ये कोई लक्ष्मी थोड़ी होती है। और नारायण भी वही कहलाएगा जिसके अंदर नर नारायण बन करके वो गुणों का संचय हो उसके जीवन में। तो ये मानव ही इतना श्रेष्ठ था, और मानव ही अपने कर्मों से नीचे गिरा है, जो दानव बन गया है। तो देव और दानव कोई दूसरे नहीं थे, हम ही हैं। जब देव थे तो सतयुग में थे, और अभी दानव कलयुग में आ गए हैं। 84 जन्मों की हमने सीढ़ी नीचे उतरी है। कई समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर है, नर्क कहीं नीचे। हम कहते हैं स्वर्ग ऊपर या नर्क नीचे की बात नहीं है, ये चार युगों की सीढ़ी है। स्वर्ग ऊपर माना सतयुगी दुनिया, वो स्वर्ग थी जिसमें मानव देव था। तो कैसे वो देव बना? अपने श्रेष्ठ कर्मों से देव बना। फिर कई कहते हैं कि अगर हम देव थे फिर दानव कैसे बन गए? तो सतयुग त्रेता में तो देवता स्थिति थी, लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ आत्मा खुद को भूल गई और देह अभिमान में आ गई, और देह अभिमान के वश होकर के पाप कर्म करने शुरू किए। वो श्रेष्ठ कर्मों का फल दो युग तक चला, और उसके बाद दो युग पाप और पुण्य, ये दो प्रकार के कर्म चले। देवताओं के जीवन में भी हमारे कर्म तो होते ही थे, लेकिन वो कर्म कौन से होते थे? फल के रूप में कर्म, क्योंकि जो सुख आत्मा को प्राप्त है, चारों प्रकार का सुख तन का, मन का, धन का, संबंधों का इतना सुख प्राप्त है, जो आज भी उनकी जड़ मूर्तियों को जो मंदिरों में पूजी जाती है उनको भी चारों प्रकार का सुख है। निरोगी काया का प्रतिरूप अखंड मूर्ति, मन की शक्तिशाली स्थिति का रूप उस मूर्ति के चेहरे में, इतनी शक्ति, इतनी शांति देवताओं के चेहरों में आप देखेंगे। लक्ष्मी नारायण देखो कैसे सौम्य मूर्ति है, अंदर की कितनी शांति है। और धन की कोई कमी नहीं, आज भी मूर्तियों को सच्चे जेवर पहनाते हैं जो इंसान को पहनने को नहीं मिलते, पर मूर्तियों को पहनाए जाते हैं, तो क्या नहीं धन होगा उनके पास। और संबंधों में इतना सुख, इसीलिए लक्ष्मी नारायण हमेशा इकट्ठे दिखाएंगे। और अगर महालक्ष्मी भी दिखाते हैं चार भुजाधारी, वो भी लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड स्वरूप है। लक्ष्मी आगे है तो महालक्ष्मी का रूप है, और नारायण आगे है तो विष्णु का रूप है। ये विष्णु या महालक्ष्मी, ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है चार भुजाधारी में। तो चार भुजा किसके होते थोड़े, ये दो दो भुजाएं होती है, लेकिन इनको कंबाइन किया है इसलिए विष्णु या महालक्ष्मी दिखाते हैं। अब ये मानव जो देव थे वो ही तो नीचे आए, तो द्वापर युग से दो पुर हो गए, आत्मा खुद को भूल गई, कर्म पाप के गए होते गए। तो कई कहते कि क्यों हम गिरे, क्यों हम मानव बने, देवता ही रहते थे। अब इसका कारण ये है कि इस समय जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं इनका फल दो युग तक चलता है, और वहां जो हमारे कर्म होते हैं वो सतयुग के कर्म न सत्कर्म कहलाएंगे न पुण्य कर्म कहलाएंगे, और पाप तो है ही नहीं, लेकिन अकर्म कहलाते हैं। अकर्म की परिभाषा, अकर्म हम उसको कहेंगे जो कर्म है लेकिन आगे उसका फल नहीं है। जैसे आप एक बार बैंक बैलेंस में एक लाख रुपया जमा कर दिया, और रोज आप एक एक हजार रुपया निकालते जाएं, तो एक लाख जमा करना भी कर्म है, वो डिपॉजिट का कर्म है, पर रोज एक हजार निकालना विड्रॉल ये भी कर्म है, लेकिन वो खाता आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और सौ दिन के बाद वो खाता खाली हो जाएगा। तो दो युग तक तो हमने इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का फल पाया, पर वो भी कर्म के रूप में है, तन मन धन संबंधों का सुख पा रहे हैं, फल खा रहे हैं, पर आगे कोई कर्म का खाता जोड़ा नहीं, इसलिए वह कर्म कहलाता है। और जैसे त्रेता समाप्त होता है, द्वापर हुए, दो हाथ है, ताली बजी, आवाज बना, पाप कर्म का खाता शुरू हुआ, फिर पुण्य कर्म का भी थोड़ा थोड़ा खाता शुरू होता है, मंदिर बनाना, गुरुद्वारे बनाना, प्याऊ बनाना, धर्मशालाएं बनाना, अस्पताल बनाना, क्योंकि पाप कर्मों का फल मिलता गया, तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी, संबंधों में अनबन। और अभी जो स्थिति है कलयुग के अंत में, ये स्थिति तो इतनी बुरी है जिसको हम कहेंगे मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है। कई समझते हैं कि हम अपने पाप कर्मों का फल जानवर योनि में भोगेंगे, 84 लाख योनियां बताते हैं। शिव परमात्मा कहते हैं नहीं, अधिक से अधिक 84 जन्म ही है, 84 लाख योनियों की बात नहीं है, वो तो संसार में अनगिनत योनियां हैं, किसने गिनती की, पर हर मनुष्य आत्मा उन योनियों में जाए ऐसी बात नहीं है। कई ये कहते तो फिर हम अपने पाप कर्म वहां भोगेंगे, हम कहते मनुष्य योनि में इतने पाप कर्मों की भोगना हो रही है, जितना इंसान आज भोगना भोग रहा है उतना जानवर भी नहीं भोगते हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना, इंसान को तो बुद्धि बहुत है। तो मानसिक जो परेशानियां झेल रहा है उतना जानवर भी नहीं झेलता, शारीरिक तो है ही, इंसान के जो स्थिति में जो भोगना है वो जानवरों से भी कड़ी है। तो कोई कहे उस योनि में भोगना भोगेंगे, ये सोचना भी गलत है। परंतु फिर कहते ये शास्त्रों में लिखा है, तो हम कहते शास्त्रों में इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा होगा क्योंकि उनको मालूम था आगे चल करके घोर कलयुग आएगा और लोग बहुत पाप करेंगे, इसलिए लोगों को डराया जाए कि पाप मत करो, आपको ये योनि मिलेगी वो योनि मिलेगी। अभी तो इतने पाप हो रहे हैं तो इंसान तो होने ही नहीं चाहिए, और ये केवल भोग योनि जानवरों की है, उनकी योनि होनी चाहिए। पर यहाँ तो इंसानों की भी योनि बढ़ती जा रही है, जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, जानवर एक्सटिंक्ट होते जा रहे, इंसान तो जितने मरते हैं उससे तो 10 गुना पैदा होते होंगे। तो इसीलिए मनुष्य आत्मा को मनुष्य का ही चोला मिलता है। अब ये जब हम समझते हैं तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। हमें अब 3 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे सिर पर बहुत पापों का बोझ है, 63 जन्मों के पापों का बोझ है, और वो 63 जन्मों के जो द्वापर युग से हमने पाप किए वो सारा बोझ यहाँ ही खत्म करना है। अगर यहाँ खत्म नहीं करेंगे तो परमात्मा कहते हैं, याद रखो शिव बाबा कहते हैं, मैं धर्मराज भी हूं, पाप कर्मों की गठरी खाली करवाऊंगा और खाली हाथ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति विदेश से कुछ चरस गांजा या कुछ ड्रग्स ऐसे लेकर के आता है जो गैर कानूनी है देश में लाना, तो कस्टम्स में तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा वो चीज तो उनसे छीन ली जाएगी, लेकिन साथ साथ उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल भी भोगना पड़ेगा, और उससे और अधिक समाज में कितना बुरा नाम होगा उसका कि अरे ये व्यक्ति पकड़ा गया। तो पाप कर्मों की गठरी परमधाम नहीं चलेगी, आत्मा को परमधाम जाना है अभी, तो पाप कर्मों की गठरी यहां ही चुप्तू करनी है। कैसे चुप्तू करेंगे? उसके लिए परमात्मा कहते हैं, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये राजयोग अग्नि के रूप में हमारे पापों को भस्म करेगा और आत्मा का शुद्धिकरण होगा। तो बहुत ध्यान रखना है कि हमें जितना हम योग लगाएंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, उतना आत्मा पावन बनती जाएगी। और दूसरी बात कि वर्तमान में कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं, कोई भी कर्म काम क्रोध लोभ व अहंकार के वश होकर के दे अभिमान में आकर के नहीं करना है, नहीं तो पाप का खाता बनेगा। पिछलाई ही चुप्तू करना है, उसमें ही मेहनत है, तो अभी और बनाएंगे तो क्या होगा। और तीसरी बात, भविष्य 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है, भविष्य का सोचना है। उसके लिए अपने तन से मन से धन से सेवा करो, दूसरों की दुआएं लो, ये दुआएं आत्मा के साथ चलेगी, और अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। इतना जो पापों का बोझा है वो सिर से हटाने के लिए हमें दुआएं लेनी है, इतना ही पुण्य जमा करना है, श्रेष्ठ कर्म जमा करने हैं, योग लगाना है, और आगे कोई पाप कर्म नहीं करना है। जैसे किसी व्यक्ति ने चलो किसी की हत्या की हो मान लो, और उसको उम्र कैद मिल जाती है। अब उम्र कैद भोगता हुआ व्यक्ति अगर जेल में बहुत उसका चरित्र उसका कॉन्डक्ट अच्छा होता है तो धीरे धीरे उसकी सजा कम भी की जाती है क्योंकि उसका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा है, बदल गया है। तो जो कुछ हुआ वो पास्ट इज पास्ट, बीती को भूल जाओ। अब अभी मुझे क्या करना है, यहां से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अब ये आप सबको वायदा करना है। आप तीर्थ स्थान पर आए हो तो कुछ तो दान करके जाएंगे ना, तीर्थों पर जाते दान करते हैं, तो भगवान आपसे दान मांग रहा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, तो भगवान झोली में क्या मांग रहा है आपसे? आपकी बुराइयां, आपके अंदर जो कमजोरियां हैं। तो हम कहते हर एक के पास 5 खोटे पैसे हैं, वो खोटे पैसे शिव बाबा को दे दो, तैयार हो देने के लिए? हाँ, जो तैयार है हाथ उठाएं। अच्छा, सारे तैयार है, तो खोटे पैसे कल से नहीं होंगे आपके पास। कौन से खोटे पैसे? हाँ, यही विकार। तो हम कहते हैं कुछ देके जाओ, कुछ लेके जाओ। क्या लेके जाएंगे? 5 खोटे पैसे देके जाओ और 1 आना लेकर के जाओ। एक आना, कौन सा एक आना? एक बार रोज सेवा केंद्र पर आना, ये आना लेकर जाओ। 16 आने रुपए में होते थे ना, तो वो आना माना एक बार रोज सेवा केंद्र पर आना। मंजूर है आपको? हाँ? कुछ देके जाओ, कुछ लेके जाओ, तो क्या होगा आप? और जो कुछ आप श्रेष्ठ कर्म करोगे भी, वो परमात्मा को समर्पित कर दो और शांति और शक्ति की आपको बहुत अनुभूति होगी। लेट गो करो, दया आप भूल जाओ, क्षमा करो भूल जाओ, ये सब पाप कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। दुखी मत हो जाओ, अपने को दुख मत दो। कोई किसी को दुख नहीं देता, हम खुद ही अपने कर्मों से, अपनी सोच से दुखी होते हैं। और जैसे पंछी पकड़ के रखता है डाली, तो स्वतंत्र कैसे होगा, उड़ेगा कैसे? छोड़ो तो छूटो। हाँ, जो कुछ भी बात है, ईश्वर को दे दो अपनी समस्या। जैसे पतंग को उड़ाते हैं, उसको ढीला छोड़ेंगे तो और ऊंचा उड़ेगा, वैसे अपनी समस्या ईश्वर को दे दो और ढीला छोड़ दो उसको, पकड़ के मत रखो कोई भी बात। तो देखो आप इस संसार से कैसे सुंदर रूप से आप जिएंगे और संसार से खुशी खुशी जाएंगे। क्योंकि हम इस संसार में क्यों आए हैं ये भी तो पता हो ना। इस रंगमंच पर हम अभिनेता की तरह आए हैं, और अभिनेता होने के कारण हमें अच्छे से अच्छा रोल बजाना है, अच्छे से हीरो का रोल बजाना है, विलियन का रोल नहीं बजाना है। दुख नहीं देना है किसी को, यही हमारा रोल हो अच्छे से अच्छा। कौन सा कहा जाता है अच्छे से अच्छा रोल? जो आत्मा के मूल गुण है, शांति, प्रेम, शक्ति, दया, ये सब गुण बांटने हैं। और गुण बांट करके उस परमात्मा को याद करना है, और ये लक्ष्य रखना है कि मुझे अपने कर्मों से उस ईश्वर को प्रत्यक्ष करना है जिसने मुझे इस संसार में भेजा, क्योंकि अभी वापस उनके पास ही जाना है। इसलिए मेरे कर्म ऐसे श्रेष्ठ हो जिससे उसका नाम रोशन हो। अब तैयार हो उसके लिए? हाँ, जो उसके लिए तैयार है फिर से हाथ उठाओ। चलो, तो शिव बाबा देख रहा है आपको, आपने भगवान के घर में हाथ उठाया है, पान का बीड़ा उठाया है, एक संकल्प किया है, और इस संकल्प को आपको अवश्य पूरा करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारा बहुत सुंदर सत्र चलेगा, जो शांति अनुभूति सत्र है, 7 बजे तक। और उसके बाद दादी जानकी जी आएंगे और वो हमें योग कराएंगे, और फिर 7:30 बजे संबोधन करेंगे। अभी 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में हम बैठेंगे और फिर दूसरा सत्र आरंभ होगा।
कर्म करो ऐसे भाई, पड़े न फिर पछताना। पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना, कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना, कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना, कर्म करो ऐसे कर्म करो।